ठाकुर जी की तरफ से
Thank you. Thank you. के उकाले हुए बोलो श्री वृंदावन की हरि लाल की जय। जय जय श्री राधे।
कृष्ण काले हैं ना, तो ये बतलाएगा कि किस लिए काले हुए। कृष्ण खुद बोलेंगे,
तू भेद बताता ना तेरा रंग काला।
Thank you.
के संबंध में बतलाया ये प्रेमातु भक्त है और ऐसे प्रेमातु भक्त लोग वृंदावन में जाते हैं और माता पिता का भाव गोपियों का भाव देखकर चकित हो जाते हैं। ये परब्रह्म सनातन ब्रह्म कृष्ण और इनके प्रति ऐसा उन्नत भाव आश्चर्यचकित रह गए। तो जिन गोपियों की वो वंदना करते हैं वो गोपियां कैसी हैं? वो साधारण भक्त नहीं है, वो गोपियां कृष्ण की कलाएं हैं, स्वरूप हैं। राधा जी उनकी अंतरंगा शक्ति हैं और उनकी काय व्यूह और दूसरी सखियां हैं, कृष्ण ही है ऐसा समझ। कृष्ण ही स्वयं राधा जी के रूप में प्रकट हैं अपनी सेवा को दिखलाने के लिए, और राधा जी की काय व्यूह और सब सखियां साधारण नहीं है। जगत की कोई स्त्री गोपियां नहीं है और पुरुष भी कृष्ण नहीं है, साधारण नहीं। कृष्ण रोते हुए उनके हाथों को हाथ में लेकर सोने के रथ के साथ साथ चल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में देखा उद्धव जी ने, जो ये तो ऐसे जाएंगे नहीं लौटेंगे नहीं, इसलिए रथ पर सवार हो गए। रथ संपूर्ण सोने का बना हुआ और इसी में अक्रूर चढ़कर आए थे और कृष्ण और बलदेव को लेकर के लौटे थे, कंस ने दिया था। अब कंस मारा गया, अब उसी रथ पर कृष्ण ने इनको दिया। इनको कुछ संदेह था कि मैं जाता रहा हूं किंतु बिना कृष्ण के मैं एक मिनट मुहूर्त नहीं रह सकता, संभव नहीं है मेरे, मैं कैसे रहूंगा? समझाने में तो देरी लगेगी। कृष्ण बोले, देखो मैं, मेरा हृदय एक टुकड़ा केवल यहां है, मैं संपूर्ण से प्रज में ही। वृंदावनम प्रत्यज पाद एकम न गच्छति, कृष्ण वृंदावन को छोड़कर के कभी नहीं जाते। जो मथुरा में आए, जो द्वारका में गए, वो कृष्ण से कुछ अन्य कृष्ण है, वो कृष्ण नहीं। वो जो गए वो वसुदेव नंदन गए। कृष्ण नंदनंदन के रूप में वो वहीं पर रहते हैं। इसको समझाने में बहुत समय लगेगा किंतु ये समझ रखिए, कृष्ण ने किसी असुर को नहीं मारा, उनमें विष्णु भी हैं, उन लोगों ने उनको मारा। कृष्ण तो बस रास विलास में रहते हैं, इसलिए मथुरा में भी वही विष्णु तत्व जो है वही पे, और उन्होंने मारा। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरा हृदय का एक टुकड़ा केवल, अर्थात एक अंश केवल मथुरा में है, मैं संपूर्ण रूप से ब्रज में रहता हूं। जाओ तुम देखो, तुम जाओ, तुम कुछ शंका मत करो। शाम हो गई, उनको चलते चलते गायें वन से लौट रही, करोड़ों करोड़ों गायें, उनके खूब से जो धूल उड़ी वो सारे आकाश मंडल में व्याप्त हो गई और उसी से अंधकार हो गया। उद्धव जी ठीक उसी समय में नंदब्रज में, नंद गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा क्या, वही कृष्ण के समय में जैसा ब्रज था, जो उन्होंने कहा था ये दिखला रहे हैं कृष्ण, जब मैं ब्रज में था ठीक वही ब्रज को देखो, पीछे उस ब्रज को देखो, हमारे बिना जो ब्रज है। देखा क्या, करोड़ों करोड़ों गायें पल से चारण करके और लौट, और करोड़ों करोड़ों बछड़े बछड़ियां काले रंग के सफेद रंग के वे उछल कूद रहे हैं। गायों का स्तन एकदम जमीन तक बहुत बड़ा भारी लटका हुआ था, उसके भार से वो धीरे धीरे चल रही, अधिक तेजी के साथ में नहीं चल सकती। एक एक गाय समझो जो 50 लीटर 60 लीटर 100 लीटर दूध देने वाले काम फेन में है, और सांड लड़ रहे हैं, और क्या देखा, गाय दुहने के लिए गोप लोग कह रहे हैं गोपियों से, दोहनी पात्र ले आओ, मटकी ले आओ, बछड़े छोड़ दो, बछड़े को हटाओ, दूध ले जाओ। ये घोष, घोष माने शब्द हो रहा था, इसलिए घोष पल्ली कहते हैं। घोष माने ऐसा शब्द हो रहा था सर्वत्र उस समय शाम, जिस समय कृष्ण के समय में जैसे होता था ठीक उसी रूप से हो। उस समय में गोपियां अलंकारों से सुसज्जित होकर अतिथि गो विप्र देव इत्यादि का अर्चन में लगी थी। कुछ गोपियां शाम को दधि मंथन कर रही थी बड़े सुस्वर से, जैसे उस दिन बतलाया था, गोविंद दामो धर्माधरेति गोविंद सुगंधित हो। आजकल की वो लकड़ी वाली जो जलती है ये धूप नहीं, जिसके थोड़े से देने से सुगंध चारों तरफ में भर जाता है, और दीप सोने सोने के डंडे पर रखा हुआ, घी से जलता हुआ दीप, जिसे आंखें भी साफ हो जाती, दीप इत्यादि जल रहे थे। घर घर में मानो कृष्ण ही आए हों, सर्वतः पुष्पित बन रहे, चारों तरफ में फूल विकसित हो रहे हैं। ब्रज का जो स्वरूप कृष्ण के समय था उस समय वही, चारों तरफ में कोयल कुहू कुहू कर रहे, मयूर नृत्य कर रहे हैं, जल के पक्षी वो भी कलरव कर रहे हैं। मानो जब वो ब्रज में पहुंचे तो रथ से उतर करके नंद भवन में पहुंचे। किसी ने भीतर में भवन में नंद बाबा थे, कृष्ण के विरह में मग्न थे, सुना मथुरा से कोई आया है और नाम अपना उद्धव बतला रहा। नंद बाबा समझ गए उद्धव आया है, उद्धव को सभी जानते थे। उद्धव है कौन? कृष्ण का भाई है। कैसा भाई? देखो, अजामिल नाम के एक राजा थे मथुरा में सूर से, उनकी दो पत्नियां थी, एक पत्नी से सूरसेन पैदा हुए क्षत्रिय, और एक से परजन्य बाबा नंद बाबा के पिता है। परजन्य के 5 लड़के हुए और सूरसेन के 2 पुत्र हुए, एक का नाम बड़े का नाम पशुदेव और दूसरे का नाम
देवभाग।
देवभाग जो देवभाग का लड़का, भाई लगे। कृष्ण तो जन्म से ही मथुरा चले आए, वृंदावन चले आए, किंतु बचपन से ही ये भक्त थे। खेलना इत्यादि छोड़कर दिन रात भगवान के चिंतन में लगा रहा, बड़ा साधु स्वभाव, बड़ा बुद्धिमान, बतलाया ना बृहस्पति जैसा बुद्धिमान, उनका शिष्य, कृष्ण का सखा, कृष्ण का मंत्री, कृष्ण का सेवक दास सभी था। इसलिए कृष्ण जानते थे, वो कृष्ण को जानता था जो हमारा भैया सुन लिया था अभी वृंदावन में है, आज जब वहां से लौट करके आए तो दोनों में बड़ी मित्रता। इसलिए उद्धव जी उनके भाई हैं। तो नंद बाबा सोच रहे कि हमारा भतीजा आया है, बहुत ही अच्छा लड़का है, कृष्णश्च अनुचर, कृष्ण का अनुचर है, सखा भी है। बड़े प्रसन्न हुए, घर से निकल आए, आते हैं उद्धव जी उनके चरणों में गिर गए। कृष्ण ने भी कहा था कि हमारा प्रणाम पिताजी से कहना, माताजी से कहना। उद्धव जी ने कहा ये मेरा प्रणाम है, ये कृष्ण ने आपको प्रणाम किया, आपके बेटे ने। इसके बाद में बड़े प्यार से उनको आशीर्वाद दिया, हाथ पकड़ करके घर में ले गए। देखा जी दूर से आया है, भूख लगी होगी, शाम का समय हो गया है, सूर्य भी अस्त हो गया है, इसलिए खाने का कोई प्रबंध कहीं आ जाए। अपने घर में यशोदा जी तो औंधी पड़ी हुई है, शरीर में शक्ति भी नहीं है रसोई बनाने की, और बनाए तो किसके लिए बनाए। रसोई घर में अभी लीपना पूतना भी नहीं होता, बर्तन भी बिना मजे हुए औंधे पड़े हैं, और चूल्हे पर मकड़ों ने जाल बुन दिया है, रसोई नहीं बनी, किसी प्रकार से जीवन धारण कर रहे हैं। किंतु ये आया है भतीजा, अब बेटे का सखा, इसके लिए कुछ उचित प्रबंध करना अच्छा है। ये सोच करके उन्होंने किसी से कहा, देखो ब्राह्मण के यहां खीर बना हो वहां से ले आओ, या बनवा करके जल्दी से ले आओ। वो गए और गांव से बाहर में ब्राह्मण का घर था, ब्राह्मण के घर से खीर बनवाया, किंतु उसके घर में भी चीनी मिश्री मीठा कोई चीज नहीं था जो उसने दिया। ऐसे ही खीर बना लाया बिना चीनी के ही, भूख तो लगी थी, वस्तु में स्वाद नहीं होता, किसमें, भूख में, और भूख में प्यास में यदि किसी ने प्रेम के साथ में कोई भी चीज दे दिया, सूखी रोटी भी दे दी, तो अमृत के समान मीठी होती है। तो उन्होंने खाया, खाने के बाद में थोड़ा सा विश्राम किया, इसके बाद में नौकरों से उनका पत्सम बांध कराया, हेल्थ बॉय। इसके बाद में उनके पास में जाकर के बैठे, क्वचित अंग महाभाग सखा न सुर्णन का, पूछ रहे हैं जो पूछूं जो हमारा लाला कैसा है, कृष्ण का नैया कैसा है। कि जब ये सोचते हैं और बोलना चाहते हैं गला रुद्ध हो जाता है, आंखें फटकाती हैं, बोल नहीं सके। बहुत बार चेष्टा की बोलने की, बोल नहीं सके, अंत में बोले ओ हमारा भैया बड़ा सौभाग्यवान है वसुदेव जी के लिए, और बड़े कष्ट से जीवन धारण किया, अब तो कंस अपने पापों से ही मारा गया, किसी ने मारा नहीं, अपने पापों से ही मारा गया। अब वो कुशल से है, उसके भाई बंधा जो बाहर में चले गए थे सब आ गए हैं, सभी लोग कुशल से हैं, और धर्मशील साधु जो जमुना जदुओं से ध्वंस करता है जो धार्मिक व्यक्तियों से द्वेष हिंसा करता है वो अपने आप ध्वंस हो जाता है। इसलिए साधुओं से, साधु स्वभाव वाले भक्तों से, परिवार से लड़ाई झगड़ा विवाद नहीं करना चाहिए, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका वंश ही ध्वंस हो जाता है। और यह कहते हुए किसी तरह से बोले, ओ मेरा लाला, क्या मुझे और मैया को स्मरण कभी करता है, याद करता है? अपि स्मरतन कृष्ण मातरम सुहितम सखा, क्या स्मरण करता है? कभी जो वृंदावन के सभी पशु प्राणी पक्षी सब कृष्ण ही के हैं, कृष्ण ही उनके प्राण हैं, उनका स्मरण करता है? कभी अपनी गैयों को, कपिला गैया है, भवली गैया है और कालिंदी है, तरह तरह के गायों को नाम रखा था, बछड़ों का नाम रखा था, कभी उनको स्मरण करता है कि मरी की बची? और वृंदावन उसका बड़ा प्यारा था और सबसे प्यारा उसका गोवर्धन था, वहीं पर गोचारण के लिए जाता, वहीं पर सखाओं के साथ में, सखियों के साथ में मिलता, खेल करता था, उसको याद करता है। क्या कभी वो आएगा अपने पिता माता को और सब लोगों से मिलने के लिए कभी आएगा? ओहो, ये कहते 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 गला और खड़ा है, यदि आएगा तो उसे हम देख सकेंगे। और उसको भूलने के लिए हम कभी यमुना के तट पर चले जाते हैं घर छोड़कर, घर में उसकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो यादगार करती हैं, याद आती है, स्मरण कराती है। इस आंगन में खेलता था, उसके खिलौने, उसकी बंसी है, बांसुरी है, उसका मोर मुकुट है, सभी कथाएं बोलते हैं, याद ले आते हैं, इसलिए घर में नहीं रह पाता। उसकी मैया की स्थिति देखता हूं तो घर में नहीं रह जाता, इसलिए यमुना के किनारे जाता, वहां जाने पर देखता हूं तो उसी घाट पर खेलता था, उसी में स्नान करता था, वही कदम्ब वृक्ष के नीचे बंसी बजाता था, उसके पैरों के छाप आज भी हैं, धड़ धड़ नहीं कर पाता, वहां से लौट करके गोवर्धन में जाता, वहां कुंज कुंज में उनकी नहीं जाए, कंदरे कंदरे परमदमतन लीला कंदरे कंदरे के रजयति नवजूनो दंतमश्मी नमंदम इतिकल कलनाथम लग्न तस्तत गयो में यह निकट निवासम दे। हे गिरिराज गोवर्धन, हमें अपना स्थान दीजिए, यहां इसके कंदराओं कंदराओं में, गुफाओं में, कुंजों में तरह तरह की क्रीड़ा करते, आप उसके साक्षी हैं, आप मुझे भी स्थान वहां पर इन लीलाओं का स्मरण कर सकूं। किंतु वहां से फिर घबरा कर चला था दूसरी जगह जा, कहीं चैन नहीं, ऐसा ब्रज में कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई वृक्ष नहीं जहां पर वो लीलाएं मिलती, उसके चरण चिन्ह न हो। इसलिए हमारे रूप सनातन गोस्वामी एक एक पेड़ के नीचे रहते थे, एक रात आज एक पेड़ में, दूसरे पेड़ के नीचे, दूसरे दिन तीसरे। इसलिए ये लीला, ये जो वृक्ष है नहीं, साधारण नहीं है, ऋषि मुनि और कृष्ण के कृपा पात्र है, जो कृष्ण की लीलाओं को देखा है उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी जड़ों को पकड़ करके रोते थे, लीलाओं की स्फूर्ति उनको होती थी। और कृष्ण साधारण लड़का तो था नहीं, हजारों हाथियों से का बल पाने वाला कंस कंस को स्पर्श मात्र से ही मार डाला, और धनुष यज्ञ में धनुष को कोई उठा नहीं पाता था और उसको उठा करके झट तोड़ दिया, कुबल्यापीठ को मार दिया, चारु मुष्टि को मार दिया। यह साधारण था, असाधारण प्रणम्बा सूर, भेंगा सूर, तृणावत, बक, अखर, इन सब असुरों को बात की बात में मार डाला। दैत्य और दानवों के लिए और देवताओं के लिए जितना भी जिनके लिए बड़ा भारी मुश्किल था, उन लोगों को क्षण मात्र में मार दिया, परास्त कर दिया। इसलिए मैं जहां जाता हूं, घर में, दिन में, रात में, कभी मुझे चैन नहीं मिलता है। और यही कहते 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 कलारित हो गया, बोल नहीं सके। उद्धव जी ने देखा परब्रह्म के प्रति, कृष्ण के प्रति पुत्र का इतना बात्सल्य भाव, साधारण एक बालक ज्ञान करके, और ये सब पुत्र के प्रति इतना प्रेम कर रहे हैं, क्या बतलाओ। इनको कुछ सांत्वना देना है, रो रहे हैं डकर डकर के, क्या करो। कृष्ण ने कहा ये सांत्वना देना, तो क्या कहूं, मत रो। कृष्ण के लिए यदि थोड़ा सा कोई एक बूंद भी अश्रु प्रवाहित हो और वह, तो उसका जीवन सार्थक हो गया कृष्ण के लिए। कथाओं को भी सुन करके उनके लिए चित्र वैकुल्य हो जाए, चित्र और आंख से आंसू निकल जाए, तो समझे उसका जीवन सार्थक हो गया। और ये तो निरंतर रो रहे हैं, तो कहूं जे नंद बाबा रोइए मत, ये तो ठीक नहीं। शास्त्र कहेंगे तुम उनको उपदेश दे रहा है, एक थोड़ा सा रोने से ही उसका जीवन सफल हो गया, और कहेंगे उनके लिए मत रो, कोई अपने बेटे के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, पति के लिए कोई रोता है, रोती है, तो उसे कहते हैं कि मत रो, भगवान का स्मरण करो। किंतु इसके लिए क्या कहूं, उनकी बुद्धि में कौन, किनके बुद्धि में बृहस्पति जैसे योग महाबुद्धिमान के दिमाग नहीं आ रहा बेटा, फिर कहूं क्या। नंदबाबा खूब रोइए, ये तो नहीं कर, ये तो संतना की बात नहीं, खूब रोइए, आखिर मैं कहूं तो क्या कहूं। फिर सोच विचार करके, फिर सोच विचार, अजय अब हमको यही कहना होती है, अब बड़े शोभा। इसलिए सोच विचार करके तब बोले, बाबा युवान श्लाक खत्म हो नूनम देवी नामी हम मानद नारायण अखिल गुरु यत्कृता मति दृशि। ओ नंद बाबा आप धन्य हैं, जो सुधा मैया धन्य है, जो देह धारण करने वाले जितने शरीरधारी हैं मनुष्य, उनमें आप ही लोग सौभाग्यवान हैं, आप ही लोगों का जन्म धारण करना सार्थक है। नारायण जो अखिल जगत के गुरु हैं, परब्रह्म हैं, सनातन ब्रह्म हैं, और उनके प्रति आपकी ऐसी मति, ये हमारा पुत्र है और उसके लिए रो रहे हैं। अरे वो तो जगत का आदि बीज है, सब कारणों का कारण है, ब्रह्म जिसको कहते हैं उसके नख चंद्रिका है, नख की चंद्रिका शोभा है। परमात्मा जो है उसका एक अंश है जो जीवों के हृदय में विराजमान है। इस प्रकार से कहते कहते कहने लगे, कहते हैं नंद बाबा जो रो रहे थे उनका रोना थोड़ा सा बंद हो गया। बोले से बेटे मैं तुमको तो ये समझता था जो बहुत बुद्धिमान है, किंतु तुम्हें अभी अकल का दांत भी नहीं गया, तुमको बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं। मैंने सोचा जी कृष्ण के साथ में रहता होगा तो कुछ सीखा होगा। अरे किसको सौभाग्यवान कहते हैं समझते हो, और सब सौभाग्यवान, और मुझे कहते हैं जो सौभाग्यवान, जो जगत में सबसे दुखी है, तुम कहते हो मैं समझता था कि कृष्ण मेरा बेटा है, बस इतना ही समझता और कुछ नहीं, और तुम उसे स्वयं भगवान कह रहे हो। तो ऐसा स्वभाव, स्वयं भगवान बेटे के रूप में मेरे पास में आए और मैं उसको रख नहीं सका अपने पास, तो मेरे अंदर प्रेम कहां है? जगत में एक ही पिता था, वो था महाराज दशरथ, जो राम के साथ में वियोग होने से अपने बेटे के वियोग में हा राम और हा रा कह करके बस प्राण छोड़ दिया। मेरा हृदय वज्र का है कि अभी तक मर नहीं गया, धिक्कार है मुझे और मेरे शरीर धारण को, इसलिए मर नहीं गया। उसने कहा था कि मैं आऊंगा, इसीलिए प्राण नहीं निकल रहे, नहीं निकल रहे, नहीं तो शायद कभी मर जाते, या प्राण उसी में है उसे सुरक्षित रखा इसलिए नहीं मर रहे हैं। और ये करते करते सारी रात दोनों में कितना कितना हुआ,
35
हो गया। अरे नहीं, छप 7:15 में किया था और अभी 7:30 हो रहा है, तो ठीक है कीर्तन नहीं कर। तुमको याद है घर बांधी नू
सुखे
लागे नू ए घर बांधी नू आगू ने पूरी आ गया, तो छोड़ दो तुमको जो याद। राधा जी कह रही हैं विरह में सुख के लिए घर बांधना, घर माने किसी से प्यार किया, आग में वो जल ऊंची चढ़ने की चेष्टा की तो नीचे समुद्र में समा गई।
हमारे ब्रज के रखवाले राधिका रानी, हमारे ब्रज के रखवाले सुखेरो लगिया लगिया ए घर बांधिनो अगुने पूरी आ गलो, सुखेर लगिया ए घर बांधिनो अगुने पूरी आ गलो, सुखेर लगिया ए घर बांधिनो अगुने Yeah.
और वहीं पर बैठे ही, जबकि नजर दौड़ाई देखा सुंदर कदंब का वन था, जिसे कदंब क्यारी कहते हैं। करोड़ों करोड़ों वृक्ष उसके कुंज थे। हमने भी हजारों हजारों पेड़ों को देखा, खूब मोटे मोटे थे। वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने से बाढ़ आई, निकास नहीं हुआ और हजारों पेड़ हमारे सामने ही है सब। अब वहां पर बबूल का पेड़ लगा। मैंने गवर्नमेंट से कहा, वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, मैं वहां पर पेड़ों को लगाना चाहता हूं, फिर से अपना खर्च करूंगा, हम देश विदेश से रुपया मांग करके लाएंगे और करेंगे, आप लोगों को कुछ देना नहीं, परमिशन दो। किंतु उनकी बुद्धि में अकल में क्या पत्थर भरा पड़ा, नहीं कर। तभी मैंने 2-4 लाख रुपए खर्च करके वहां पर एक सुंदर विशाखा जी का तालाब है, कुंड, उसको बनाया, रास्ता बनाया और कम से कम तो 100 पेड़ अभी जैसे तैसे चोरी से भी छिप करके उसमें लगवा दिए हैं। और जाऊंगा तो ठीक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और लोगों से जरूरत था, ऊपर वालों से कह करके, और उसमें पूरा बगीचा जैसे पहले था लगाने की चेष्टा कर, एक निशानी है। मैंने कहा ये ब्रज की धरोहर है और आप लोग इसको नष्ट करना चाहते हैं, कोई बनाना चाहता है तो बनाना नहीं। खैर, तो वो कदम क्यारी या कहते हैं या उद्धव क्यारी उसको कहते हैं आजकल, परंतु पहले कदम का हो। उस कदम के कुंजों में कुछ गोपियां उनको दिखाई पड़ी। कृष्ण के जाने के बाद से वो गोपियां किसी को दिखाई नहीं पड़ी में। और उनको उनके बदले में जोग माया ने ठीक वैसे ही मूर्ति बना करके उनके पतियों के घर में भेज दिया, वो माया वाली। और ये असली जो गोपियां थी, विरह में उस दिन से खाना पीना सब छूट गया। विशेष करके उनकी जो प्रधान सखी थी वो और भीतर वन में, गंभीर वन में थी। इधर तो और दूसरी शक्तियां थी, उनको देखा और देख करके उपस्थित हुए उनके चरणों की वंदना करने के। जब थोड़ी देर गए तो सखियां इनको देखते ही कुछ बोली, ये कौन है आप, है कौन? देखने में सांवला सा, कृष्ण जैसा है और वस्त्रों के शेष सुगंध जो आ रही है, ये तो कृष्ण के ही वस्त्र है और वैसा ही सुगंध है। हमारी नाके नहीं, आंखें भूल कर सकती हैं, नाके भूल नहीं कर सकती। कृष्ण के अंगों का गंध हमें पता है जै कैसा होता है, ये ठीक उन्हीं के जैसा है। उन्होंने अपनी माला और ये सबसे विभूत, कृष्ण ने ऐसा आने के समय अपनी माला, अपना वस्त्र, ये सब दे रखा था। दूसरी कहती है सखी, ठीक कहती, कृष्ण तो है किंतु कृष्ण नहीं, रंग रूप तो कृष्ण ही जैसा किंतु कृष्ण। जो गोपियां विरह में उन्मत्त होकर एक तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ करके आलिंगन करती हैं, उसे बातचीत करती हैं, आज गोपियां उस वृक्ष को न बल्कि कृष्ण जैसा ही रूप सब कुछ देखा, उन्हीं के वस्त्र देखा, माला देखा, किंतु उनको पकड़ा नहीं, स्पर्श नहीं किया। उनका विशुद्ध प्रेम उनकी रक्षा करता है। विरह में तन्मय होने पर गोपियां चलती हैं, फिरती हैं, किंतु सहज समाधि उनकी लगी रहती है। सहज समाधि माने क्या? योगी लोग जो समाधि लगाते हैं उसमें तो ऐसे तन्मय होकर के अपने को खो जाते हैं, और ये चलते फिरते हुए भी समाधि में ही रहती है। उन्होंने कहा, एक ने कहा, कृष्ण तो है किंतु कृष्ण। फिर एक ने कहा, ओह, ये कृष्ण का अनुचर है। अनुचर। अच्छा तीसरी बोली, अनुचर है जानती हो, वो उसी रथ में आया है सोने के रथ में जिसमें अक्रूर ले गया, और किस लिए फिर वही रथ आया सोने का। तीसरी एक दूसरी ने कहा, जानते ही रथ किस लिए आया, सुना है कि कंस मारा गया है तो उसकी अंतिम संस्कार होना है पिंडदान, 13वें दिन में पिंडदान होता है, तो वो 13वां दिन है तो उसका पिंड देना है, तो वहां पर तो कोई पिंड है नहीं, यहां पर हम सारी गोपियां और सारे ब्रजवासी उनके विरह में मरे पड़े हैं, तो उनका यह कलेजा ले जाएगा और वही पिंडदान करेगा, शायद इसीलिए आया है। उद्धव जी सुनकर के कहिए कैसी बातें, ये कहती है कि जानती हो सोने के रथ पर किस लिए आए। हाँ मुझे पता है किस लिए, इसलिए अपने माता पिता को यह दिखलाने के लिए कि और मैं गौओं का चरवाहा नहीं हूं, अब तो मैं मथुराधीश हूं, मथुरा का राजा हूं, हमारे नौकर चाकर सब सोने के रथ में चलते हैं, यह दिखलाने के लिए अपने भैया बाप को भेजा है और इसलिए उस पर चढ़ करके आया। उद्धव जी कहते हैं कि ये मेरी गलती है, आया तो जैसे तैसे आया है किंतु इस रथ पर हमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये फिर दूसरी गलती, तो इधर क्यों आ रहा है, इधर आने की तो कोई जरूरत नहीं, यदि है तो माता पिता का संबंध नहीं छूटता है, पुत्र का पुत्र हो सकता है किंतु मैया बाप तो उसके प्रति सब समय कल्याण की भावना से प्रीति रखेंगे ही, और उनका ब्लड रिलेशन है, उनसे ये पैदा हुआ है, ये यदि अस्वीकार करेगा कि हमारा माता पिता नहीं है तो भी उनके माता पिता ही हैं, वो संबंध नहीं छूटता, एक पुत्र भी हुआ है लोग कहेंगे उसका पुत्र है, अतएव उसको उधर ले जाना चाहिए, इधर में क्यों आए, हमसे तो इनका जो संबंध है माना गया तो मानो है, संबंध नहीं तो नहीं है, शादी विवाह तो हुआ नहीं, हमारे लड़के तो है नहीं, हमारे ये कुछ है नहीं, माना था कि हमारी प्रियसी हो प्रियाए हो और हम लोग भी उनको प्रिया मानते, और वो तो सब खत्म हो गया ना, वो तो चले गए हमें छोड़ करके, संबंध सब काट करके गए, तो इधर आने की कोई जरूरत नहीं, तो हम मर मर में इस चीजों को उपलब्धि कर रहे हैं और गोपियों का विरह को समझ रहे हैं। कुछ गोपियों ने उद्धव जी को थोड़ा और आगे ले गए, देखा क्या, एक कमल की फूलों की सज्जा बनी हुई है, कमल का फूल बहुत ठंडा सुशीतल होता है, विरह में राधा जी का शरीर इतना जल रहा है कि चंदन लिप कर और कमल के फूलों पर उसे लगा दिया गया है, और राधा जी पर सोई है किंतु वह चूर्ण विचूर्ण हो गया है, और वो सोने की पुतली जी रही है या मर रही है यह पता नहीं, कोई कोई सखी ललिता हाथ में रुई लेकर नाकों के पास में ले गई और कहती है, देखती है थोड़ा थोड़ा श्वास चल रहा है धीरे धीरे, नाड़ी नहीं चल रही श्वास किसी तरह से, मरने वाली है धीरे मर नहीं रही। इसी समय में एक भौंरा काला उड़ता हुआ आया और राधा जी के चरणों में वो झंकार करता हुआ, उसको कमल का फूल समझा, लाल उनका पैर सुगंध उसमें से आता है, उसमें प्रवेश करके बैठना चाहे तो उड़ रहा है और राधा जी को हुआ मान। उसी अवस्था में, विरणी अवस्था में, काचिन मधुकर्म दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रियस्थापितम दूतम कल्पयेतम अप्रवीत। विश्व भर में भागवत जैसा कोई ग्रंथ नहीं है, सारे विश्व के ग्रंथ लुप्त हो जाए भागवत रहने से ही। फिर से इतना प्रेम, ऊंचा प्रेम विश्व के किसी भी ग्रंथ में नहीं वर्णन किया गया। गीता प्रारंभिक ग्रंथ है क्लास वन का, और ये डीए पीएचडी डीलीट का, क्या डीलीट का ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। ये साधारण लोगों के लिए नहीं है, जो प्रेम समझेंगे उसके लिए है। इसका वक्ता भी वैसा होना चाहिए, साधारण लोग नहीं इसको व्यक्त कर सकते, वो इन भावों में प्रवेश ही नहीं कर सकते। ये गुरुमुखी विद्या है, जिसका गुरु ऐसा होगा रसिक विद्वान, और सुखदेव गोस्वामी की श्रेणी में वही लोग इस सब कथाओं का रसास्वाद। मधुपकित वह बंद हो मास विषाण, तो वो ध्यानती कृष्ण संगमम, मनी मन सोच रही है, मनी मन सोच रही है कृष्ण बिना युवतियों के रह नहीं सकता। तो मथुरा में होगा ध्यान आया, तो कृष्ण किसी एक राजकुमारी के पास में गया है, और उसने मान कर लिया फिर दूसरी के पास में जा रहा, मान करते करते इधर उधर में डोल रहा, उसको इसी में आनंद आता है। ये चिंता करती हुई कृष्ण संगमम, और समझी कि कृष्ण ने फिर हमको भी याद किया है, और समझते कि इसने इस चीज को देख करके इसको मान हुआ, और इसलिए कृष्ण से रूठ गई है, इसलिए अपने दूत को भेजा है इसको। हमारे बात भी ठीक, इसके व्याख्याकार कहते हैं कि वो भौरा कोई अलग नहीं था, कृष्ण ही भौरे का रूप धारण करके गोपियों के विरह रस को देखने के लिए और समझने के लिए स्वयं आए हैं। वो जब भौरा इस प्रकार से मड़राने लगा, गुंजार करने लगा, ओ मधुपकित वो बंद हो मास पिशांग्री शपथ न, दूर हो जा मधु, मधु माने मधुपान करने वाला, मद्यपान करने वाला, मधु मधुपुरी से जहां पर मथुरा का डिपो है, जहां पर मथुरा में डिपो, डिपो माने बहुत बड़ा भारी केंद्र है जहां पर मधु मध्य बिकता है, और उसका पति कौन है बेचने वाला, काला कृष्ण। तो वो मधुपुरी से आया है, मधु पान करके आया है, और अपने सखा का दूत बन करके आया है। हम सब समझती हैं, मत छू हमारे पैरों को, दूर हट गया अपवित्र कुछ बिलितमाला कुंकुम, और तुम्हारे गुंफे कैसे रंगी हुई है, भ्रमर झंकार कर रहा है उसको सुन करके, ओ तुम ये कहना चाहता है, मैं देवी मैं पवित्र अपवित्र कैसे हूं, मैं तो अपवित्र नहीं हूं, और मैं मदिरा पान करके भी नहीं आया, तो तुम्हारी ये मुझे क्यों पी ली है। कुमकुम होता है जो गोपियों के बस्तक्षल पर, स्त्रियों के बस्तक्षल पर लगाती हैं, वो कृष्ण की माला उसमें में लग गई, और तू उस पर बैठा कृष्ण की माला पर, और फिर तुम्हारे गोप पर लग गई, दूर हट जा मत आ यहां से, निकट में मत आ अपवित्र।
और झूठ बोलता है। जैसा मालिक वैसा ही उसका मुनीब। वो मदिरा पान करने वाला, तुम भी मदिरा पान करने वाला, और तुमको दूध बना करके भेजा है, सिखा पढ़ा करके भेजा है। देखो जैसा दूध है वैसा ही तो उसका मालिक होगा, हम अनुमान कर देंगे। तो तुम जैसा मूर्ख है और पवित्र अवस्था में माननीयों को मनाने के लिए इस रूप में नहीं आना चाहिए, तुमको ज्ञान नहीं है। हम सब समझ गए हैं कि कहां से तुम आया है, कैसे ये तुम्हारा ये लाल इला है। ऐसे हम समझते हैं कि तुम्हारा वो मुनीब होगा वैसा ही होगा। कैसा जतु सदस्य सब विडम्बम जस वहां कृष्ण जब जदुओं की सभाओं में जाएगा तो उनकी रानियों से जब मिला होगा तो उसका चिन्ह जरूर उसके पास होगा। उसे देख करके जदुपति लोग सब बड़े क्रोधित होंगे, उसका अपमान करेंगे, किंतु उसको ज्ञान नहीं। इस तरह से जल प्रजल सुजल अधिजल इत्यादि भाव में विघोर होकर कभी बिगड़ रही हैं, कभी रो रही हैं, कभी कलप रही हैं, कृष्ण को धूर्त ठग छोर इत्यादि कह रहे। सखित अधर सुधान। देखो तो वो कहने ऐसी बात नहीं है मालिक स्वामिनी जी, उन्होंने तो प्रीति पूर्वक आपको मनाने के लिए भेजा है, और वो ठग भी नहीं है, धूर्त भी नहीं है, आपके प्रति समर्पित है, इसलिए आप प्रसन्न हो जाए। ओ हमको सिखलाने के लिए आया है, ये कहते हैं मधुमेह सखी तौर। तू जैसा है ना भोला भाला, वैसे ही वो भाला भाला होगा। तू जैसे एक फूल पर जाता है और फिर क्या करता है, उस फूल से रस लेकर के फिर दूसरी पर उड़ जाता है, फिर तीसरी पर उड़ता है। यदि सुगंधित फूल लाओ तभी उस पर बैठता है, मतलब क्या, कुब्जा के पास पे भी जाता है, ऐसा वो है। इसलिए सखित अधर सुधा, एक बार अपने अधर सुधा को पिला कर, और जैसे तुम एक फूल को छोड़ करके दूसरे फूल पर चढ़ जाते, उसी प्रकार से हमें सदा के लिए छोड़ करके मथुरा में चला गया। परिचरक ओ यदि ऐसी बात है सामने जी, तो लक्ष्मी जी उसकी आराधना करती हैं, और लक्ष्मी जी भी उसके पास में आती हैं, और सब समय उसके पास में हृदय में विराजमान रहती हैं। फिर कैसे, वो अभी नवेली है ना, नहीं समझती हैं। हम लोग उसको पूरा पूरा जानते हैं, वो नहीं जानती, भोली भाली है, उनके बातों में आ गया होगा। बहुत चिकनी चुपड़ी, मधुर मधुर मीठी मीठी बातें करता है, किंतु है उसके विपरीत। फिर कहते हैं तो लक्ष्मी जी उनके पास में क्यों आती है, तो इसलिए दिव भूमि चार रसायन। अरे लक्ष्मी जी की बात क्या है, इस पृथ्वी में स्वर्ग में वैकुंठ में ऐसी कोई स्त्री है जो उसको देख ले और मोहित ना हो जाए, उसकी बाणी में, उसकी ठग विद्या में, धूर्तताई में ना आ जाए, उसके लिए कोई भी स्त्री दुर्लभ नहीं है। उसकी चिकनी चपड़ी बातें से उसके बातों में आई जाती है। कपट रुचि रहा, महा कपटी धूर्त है, उसकी बातें भी ऐसी है। चरण रज उपास्य जस्य भूतिर्भयम्। ओ ये लक्ष्मी भी चरण की उनकी उपासना करते हैं, तो दूसरी स्त्रियों की तो बातें क्या है, मथुरा वाली की तो बात है, और हमारी बात क्या है। यदि ऐसी बात है तो फिर उनका चिंतन क्यों आप करते, उन्हें छोड़ दीजिए। तो वो कहती है स्वकृति है विशिष्ट विशिष्ट पाद हम वेद हम चार पाए, हट जाए यहां से, दूर हो जा, तुम अपने स्वामी से चाटकारी धूर्तता की बातें सुन करके आया, सीख पढ़ करके आया है। जानते हो हमारी ये दशा किस लिए हुई, तुम अभी जदपुर में जाएगा, जिसको मनाते हुए प्रसन्न होकर के तुमको कुछ जो चाहोगे वही दे देंगे। और आज हम जिसके लिए घर बार रहित हो गई है, घर भी नहीं है, एक चना नहीं है जो तुमको हम दे सकें, उसी के लिए तो हम अपने पति लोक लज्जा धर्म सब कुछ को उसके लिए हमारी इसीलिए बल बल में हम भटक रही हैं। देखो वो कहता है भ्रम, स्वामी जी ऐसा न कहे, वो बहुत सीधे शादी आपके प्रेम में बधे हुए, केवल आप ही को प्रेम करते हैं और किसी हमको मत समझाओ। मृगुरु कपिंद्रम एक काला था, काले मात्र ही वैसे इसके समान धूर्त होते हैं। एक काला था त्रेता युग में, उसने अपने पिताजी की बात मान करके जंगल में आया, घर छोड़ करके साधु बन करके, किंतु अपने साथ अपनी स्त्री को भी साथ लाया और साधु जैसा केश बांधा, धनुष बाण भी हाथ में और साधु का वेश भी और स्त्री भी साथ में। कहता था कि मैं तो स्त्री जीत हूं, काम जीत हूं, और अपनी स्त्री के लिए क्या क्या वशीभूत होकर के। एक दूसरी स्त्री आई थी उसके पास में, शूर्पणखा नाम की भोली भाली स्त्री, उसका रूप देख करके मुग्ध हो गई। तो उस काले ने क्या किया, भाई से कहा उसका नाक और कान कटवा दिया, कुरूप हो गई। उसने तो शादी की ही नहीं, उस पर तो वो कुर्बान थी, उसका रूप ही ऐसा है, किंतु उसने उसको नाक और कान रहित कर दिया। वो तो विवाह किया ही नहीं, दूसरे भी उसको विवाह न कर सके न रख सके, इसलिए ना कर। भला ऐसा धूर्त कपटी और कौन हो। और एक बात कहूं, वही काला ऐसा, उनका भी रंग वैसा ही श्याम, वो अपनी स्त्री के लिए सुग्रीव से मिताली की, तुम्हारी स्त्री खो गई है उसको हम मंगा देंगे और हमारी स्त्री तुम मंगा देना, और संधि किया आपको साक्षी रख करके मित्रता की, और बिना दोष के बाली को बंदर जिसका मांस कोई नहीं खाता और कोई दोष नहीं और उसको मारा, ऐसा कामी बाहर भीतर का काला। और एक काले की बात सुनाऊं, सत्यजुग की बात, वामन बन करके आया काला, बलि महाराज के दरबार में गया, बोला जी छोटी सी कुछ मैं मांगना चाहता। बलि महाराज जी मांग लो, पूरा मांग लो, हमको 3.5 कदम जमीन दे दो, तीन पाद, साढ़े ना
तीन पाग के
वो, और तीन पाग मुझे केवल जमीन दे दो। राजा हंसने लगा, जैसा बामन है बुद्धि भी बामन है छोटी, अरे मैं राजा हूं, त्रिलोकी का राज्य मांग लो, कोई सुंदरी स्त्री मांग लो, कोई राज्य मांग लो, कोई कुछ ऐसा चीज मांगो जो मैं दे सकूं, ये क्या 3 जमीन पग जमीन, मैं ब्रह्मचारी हूं, बोला कपटी है ना दो, मैं ब्रह्मचारी, मैं 3 में मेरी कुटिया हो जाएगी, रह करके भजन करूंगा, हमको और अधिक की जरूरत क्या है, हमको कोई जरूरत नहीं, हमको बस 3। अच्छा तुम यदि इसी में प्रसन्न हो तो आप ये कीजिए, संकल्प कराओ। संकल्प करने लगे तो जो
गंगा सागर
को जानते हैं ना, उसमें डंटी होती है तो उसे पानी गिर, उसमें पानी नहीं आया, उसके गुरु जी ने कौन
शुक्राचार्य
वो रोक दिया, खबरदार मत देना, और उसके जोर से उसमें बैठ गए, पानी नहीं गिरने दे। कहा कुछ श्लोक और उसके अंदर में ऐसे करो, तो कुछ ऐसा लगाया तो क्या हुआ, उसकी आंख एक फूट गई, तब से वो काने हो गए। भगवान के ध्यान में यदि कोई बाधा देता है, भक्ति में बाधा देता है, वो काना एक आंख का हो जाता है। बलि महाराज ने किंतु उनकी बात नहीं मानी और तीन पद दिए। उन्हें कहा तुम्हारा सर्वस्व ले लो, मैं तुम्हारा तुमको अभी संपात करता हूं, तुम हमारी बात, तुम्हारा सर्वनाश हो। तो उन्होंने बलि महाराज जी को फिर भी दे दिया संकल्प करके तीन पद। तो उन्होंने क्या किया, अब तक बामन थे और जब तीन पग लेने लगे थे, एक पग में ही यहां से स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक सब कुछ ले लिया, दूसरे में ये सारी पृथ्वी को माप दिया, पहली में सारी पृथ्वी को और दूसरे में और त्रिलोकी को माप दिया, और कहा जब तीसरा पैर कहां रखो बतलाओ, पूरा नहीं हुआ। तो उस समय मुंह बोले जब नहीं है तब मुझे ही माप लो, मैं सर्वस्व आपको दिया, बस उसका भी माप लो। और नाक पांच से बांध दिया, उनके अनुचर सब लड़ने के लिए है और ये नाक फांस में बच गए बेचारे। उस समय प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा जी आए, कहिए आप प्रभु जिसके नाम से भवबंधन खुल जाता है, आपको सर्वस्व दिया, आपने इसको बांध रखा, फिर उसको खोल दिया। उस समय ये रोने लगे, तो कह रहे हैं गोपियां कह रही हैं, कटाक्ष करके कह रहे हैं, बलि महाराज का सर्वस्व लिया और कौवे की भांति ठुकर आ रहा है, कोई लेकर के जा रहा है तो डलिया में से लेकर के खाएंगे भी और ठुकराएंगे भी उसको, ये तो कालो ऐसा मत कहिए, यदि ऐसी बात हो उनकी चर्चा मत कीजिए, तो उनकी चर्चा छोड़ी नहीं जाती। दुष्ट जम सब कथा, तो फिर इसी तरह से तरह तरह की बात, जो उसकी कथा सुनता है थोड़ी भी कृष्ण की बातें आई कान में तो घर बार छोड़ करके सैकड़ों वृंदावन में पहुंच जाते हैं, जैसे हमारे सब ब्रह्मचारी। अभी भी हम सुनते हैं कोई कोई लड़कियां भी कहती हैं कि महाराज की कथा सुनती तो विवाह शादी नहीं करके वृंदावन में रहे। कृष्ण की कथा ही ऐसी है, बिना पैसे हम लोग जैसे पाठ करते हैं और लोगों का चित्त चुरा करके संसार काट देते हैं, इसलिए कहते हैं उनकी बातें सुनकर के हजारों लोग वृंदावन में पशुओं की भांति पक्षियों की भांति बोलते हैं। फिर याद आए, ओ तुम वहां से आया, क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, हमने तो ये सब मैं भूल गई थी, प्यारे कि तुम सखा हो, क्या चाहते हो, वो हमें ले जाना चाहते हो, वहां जाकर के हम क्या करेंगे, उनकी तो हजारों वहां पर पत्नियां हैं, ले जाकर के क्या करें, उनके साथ में हम नहीं जा सकते। अच्छा वो कहां है, क्या मधुपुरी लौट आया है, अपने गुरु के यहां पढ़ने गया था, क्या हमें याद करता है, कभी याद करता है या वो माला बड़ी सुंदर बुद्धि थी, या इस रूप में याद करता है कि तुम लोग जैसा बनाती हो वैसा वो लोग नहीं बनाती, इत्यादि कभी कहता है, यही कहते 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 हा कृष्ण हा राम हा रमण हा नाथ और कहते रुक गए। उद्धव जी देखा ऐसा भाव करने का, देखा नंद बाबा का यशोदा का भी ऐसा नहीं, और उसकी वंदना कर आसाम हो चरण रेण गुसाम हम श्याम वृंदावने किमक भूल। ब्रह्मा जी ने उद्धव जी कहने लगे, ओ इन गोपियों की चरण भूली को प्राप्त करने के लिए जिसकी श्रुतियां आज तक भी खोज कर रही हैं, नहीं मिली नहीं मिले, वो कृष्ण इनकी मुट्ठियों में हैं, इनके वशीभूत हैं, आप उनके चरण की धूली को पाने के लिए यदि ब्रज में कहीं भी हमारा जन्म हो जाए हमारा जीवन साफ। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेम अभित जासांग फरी कथोद गीत गुना। और नंद बाबा के गांव की रहने वाली गोपियों की एक चरण धूली की उनकी भरी पड़ी है, एक चरण की रज की वंदना। आज जिस बंधन वो चरण रज इधर है उस दिशा को प्रणाम कर रहे हैं, उस चरण की धूली की वंदना में क्या कर सकता उद्धव जी तन्मय हो गए। 3 महीने तक रहे और गोपियों को पास में किंतु उनके भावों को समझ नहीं सके, सांत्वना देना तो दूर रहा और भी उनकी तिरह भी। इस प्रकार से ये भ्रमर गीत समाप्त हुआ। उनकी और भी लीलाएं हैं, यदि कभी फिर आऊंगा उन लीलाओं का वर्णन करूंगा। आज यहीं पर अपनी कथा का समापन करता हूं और समापन के बाद में अभी ये कीर्तन होने के बाद ही मैं आप लोग जो कुछ पुष्प है उसको प्रदान करेंगी, परिक्रमा करके प्रणाम करके आरती करके